ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक को राष्ट्रीय सहमति में परिमार्जित किया जा सकता है, गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ का कथन। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग को तय समय पर पूरा करने के हिसाब से काम आगे बढ़ाने का सरकार को संसदीय समिति ने किया निर्देश। विद्यमान निर्वाचन प्रणाली और शासकीय प्रणाली को बदलना चाहिए, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल का कथन। और म्यांमार की सैनिक सरकार द्वारा 4 प्रजातंत्रवादी नेताओं को मृत्युदंड। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ने कहा कि नागरिकता विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय सभा की बैठक में नागरिकता प्रथम संशोधन विधेयक 2079 के ऊपर सांसदों के उठाए सवालों के जवाब में गृहमंत्री खाड़ ने कहा कि नागरिकता को व्यवस्थित करने के लिए विधेयक लाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि विधेयक में मौजूद प्रावधानों को राष्ट्रीय सहमति में परिमार्जित किया जा सकता है। इससे पूर्व नागरिकता संशोधन विधेयक संबंध में सांसदों ने विभिन्न सुधारों की मांग की थी। सांसदों ने नेपाली नागरिक के साथ विवाहित विदेशी महिला को 7 साल के बाद अंगीकृत नागरिकता मुहैया कराने का प्रावधान रखने और मां के नाम से नागरिकता लेने के लिए पिता की पहचान न हो सकने की मां के द्वारा घोषणा करने के प्रावधान को महिला का अपमान बताते हुए इसमें संशोधन करने की मांग रखी थी। प्रतिनिधि सभा की विकास तथा प्रविधि समिति ने काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग परियोजना निर्धारित समय में संपन्न करने के हिसाब से काम को आगे बढ़ाने का सरकार को निर्देश दिया। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने मंत्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय और संबंधित परियोजना प्रमुख को निर्देश किया। बता दें कि काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग परियोजना आगामी 2081 मार्ग शीर्ष तक संपन्न करने का लक्ष्य सरकार का है, जिसमें 17% भौतिक और 15% वित्तीय प्रगति हुई है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा कि मौजूदा निर्वाचन प्रणाली के कारण श्रमजीवी जनता और क्रांतिकारियों को चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता नर बहादुर कर्माचार्य के स्मृति दिवस के अवसर पर आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निर्वाचन और शासकीय प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार संस्थागत होते जा रहा है, इसलिए बदलाव आवश्यक है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि स्थायी सरकार के रूप में रहे कर्मचारी वर्ग ईमानदार और समर्पित हो जाए तो सरकार की नीतियों के सफल क्रियान्वयन से अच्छे परिणाम आएंगे। आज मंत्रालय द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष 2079-80 के लिए कार्य संपादन समझौता कार्यक्रम में मंत्री कार्की ने ये बात कही। मौके पर मंत्री कार्की और सचिव डॉ. बैकुंठ अर्याल के बीच कार्य संपादन समझौता हुआ था। इसी तरह विभागीय प्रमुख और महाशाखा प्रमुख के बीच भी कार्य संपादन समझौता हुआ था। समझौते के बाद मंत्रालय के सचिव डॉ. अर्याल ने मंत्रालय के मातहत के निकायों में अरियर की समस्या न आने के हिसाब से काम करने का निर्देश किया था। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा कि अवरुद्ध विकास के कामों को गति मिलेगा। तनहुँ की ब्यास नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में आज स्थानीयों से मुलाकात करते हुए वरिष्ठ नेता पौडेल ने ये बात कही। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ. शेखर कोइराला ने कहा कि आने वाले चुनाव में विचार मिलने वालों के साथ तालमेल और गठबंधन करने की जरूरत है। 40वें बीपी स्मृति दिवस के अवसर पर बीरगंज के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नेता कोइराला ने कहा कि कांग्रेस को कम क्षति होने के हिसाब से गठबंधन किया जाएगा। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ ने अछाम की तुरमा खाद गांवपालिका वार्ड नंबर 2 के भूलू में कल रात हुए भूस्खलन और इससे हुई क्षति के विषय में जानकारी लेने के दौरान उद्धार और राहत कार्य में कोई कसर बाकी न रखने का संबंधित निकायों को निर्देश किया। गृहमंत्री खाड़ ने असम के प्रमुख जिला अधिकारी और जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख को टेलीफोन के जरिए ऐसा निर्देश दिया। बता दें कि कल रात अमर बिष्ट का घर में भूस्खलन में दब जाने से उनकी भाभी हरिकला बिष्ट, भाई बीरेंद्र बिष्ट और भतीजे 15 वर्षीय संविधान बिष्ट का मौत हो गई। ये जानकारी प्रमुख जिला अधिकारी विश्वराज मरासिनी ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। आज देशभर में कोरोना के 568 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 95 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं आज एक संक्रमित की मौत हो गई, ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बता दें कि आज 63,372 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिला कोविड-19 वैक्सीन का पूरा डोज लगाने वाला पहला जिला हुआ है। नवलपरासी के 99% लक्षित जनसंख्या ने कोविड-19 का पहला डोज और 97% लोगों ने दूसरा डोज लगवाया है। सिंधुपालचौक की इंद्रवती गांव पालिका वार्ड नंबर 5 कोईराला टार में पहाड़ से फिसलकर 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चौतारा सागा चौक गढ़ी नगर पालिका सानू सिरवारी की 55 वर्षीय गोमा धिताल और उनकी बहन के बेटे मिलमची नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के 5 वर्षीय विशेष 40 से शामिल है। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय नबरपुर ने दी। जंगली मशरूम खाने से जुमला में एक ही परिवार के 5 लोग बीमार पड़ गए। जंगली मशरूम खाने के बाद जुमला की तिला गांव पालिका वार्ड नंबर 4 नुआकोट गांव के लक्ष्मी बहादुर हमाल परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। ये जानकारी हमारे संवाददाता सागर परियार ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार सेना ने 4 लोकतंत्र समर्थक को फांसी की सजा दे दी है। सेना का कहना है कि इन चारों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया है उनमें लोकतांत्रिक नेता को जिम्मी और अपदस्त नेता आंग सांग सुकी सरकार के पूर्व सांसद फियो जिया थो भी शामिल थे। म्यांमार में पिछले 5 दशक में पहली बार किसी को फांसी दी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन एक्टिविस्ट्स को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। खुद के असैन्य सरकार होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय एकता सरकार के मानव अधिकार मंत्री आंग माओ मिन ने लोकतंत्र समर्थकों पर लगे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा मौत की सजा देना डर के जरिए लोगों पर शासन करने का प्रयास है। क्वान के अलावा आतंकवाद विरोधी कानून के उल्लंघन में लोकतंत्र समर्थक 53 वर्षीय क्वाओ मिन यू को भी फांसी दी गई। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। इनके अलावा सेना की मुखबिर होने के संदेह में मार्च 2021 में एक महिला को उत्पीड़न और उसकी हत्या करने के मामलों में दोषी ठहराए गए ला म्यो ओंग और ओंग थुरा जो को भी फांसी दी गई। एशिया में ह्यूमन राइट्स वॉच की एक्टिंग डायरेक्टर एलन पियर्स ने 4 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई को क्रूर बताया। दिसंबर 2021 में म्यांमार की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सुकी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 की रात सेना ने तख्ता पलट करते हुए सुकी हाउस अरेस्ट कर लिया था। मिलिट्री लीडर जनरल मिन आंग हलिंग तब से देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा था कि 2023 में आपातकाल खत्म कर दिया जाएगा और आम चुनाव कराए जाएंगे। तख्ता पलट के बाद म्यांमार में खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें 940 लोग मारे गए थे। भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने आज शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन नई दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल और ओडिशा में मंत्री रही थी। मुर्मू के खिलाफ विपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों में 64% मिला था। 21 जुलाई को मतगणना हुई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिकता विधेयक को राष्ट्रीय सहमति में परिमार्जित किया जा सकता है, गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ का कथन। काठमांडू तराई मधेश द्रुत मार्ग को तय समय पर पूरा करने के हिसाब से काम आगे बढ़ाने का सरकार को संसदीय समिति ने किया निर्देश। विद्यमान निर्वाचन प्रणाली और शासकीय प्रणाली को बदलना चाहिए, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल का कथन। और म्यांमार की सैनिक सरकार द्वारा 4 प्रजातंत्रवादी नेताओं को मृत्युदंड। रेडियो नेपाल से प्रसारित 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।